नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर कहा, संस्थान की देश के अन्नदाताओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत 48 घंटों में नशा तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध 3211 स्थानों पर छापेमारी की। हनुमान जन्मोत्सव पर कश्मीरी गेट के आसपास आज और कल यातायात प्रभावित रहेगा और विश्व का सबसे बड़ा जनगणना कार्यक्रम पहला चरण आज से शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित 122वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न, पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए उन्नत फसल किस्में और प्रिसिशन फ्लोरिकल्चर तथा लैंडस्केप डिजाइन पर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने देश के अन्नदाताओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस संस्थान ने खेतों को प्रयोगशाला से जोड़ते हुए हरित क्रांति से लेकर आधुनिक तकनीकों तक भारत की खेती को नई दिशा दी है और खाद्य सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है।
आपकी संस्था से जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत ने, दूरदर्शिता ने देश को एक नई राह दी, वो राह जिसपे चल करके भारत ने विश्व की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाया और देश का नाम रोशन हुआ। हम अपने देश का पेट भी भरते हैं और पूरे विश्व को भी निर्यात करते हैं।
साथ ही श्रीमती गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की अपील की तथा पीपल, नीम, बरगद और आम जैसे देशी वृक्षों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए रिज क्षेत्र के करीब 4200 हेक्टेयर को अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों, कृषि अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस दिशा में लगातार कार्य करती रहेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदिरा सिंह ने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि शहरीकरण बढ़ने के बावजूद दिल्ली में करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन पर अभी भी खेती हो रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान जीएपी 2026-27 के तहत राजधानी में बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस एक्शन प्लान के तहत 22 विभागों को 70 लाख से अधिक पेड़, झाड़ियां और बांस लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस अभियान के तहत वन और वन्य जीव विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो जीएपी पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रगति की निगरानी करेगा। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के अंतर्गत 48 घंटे का एक विशेष अभियान चलाकर नशा तस्करी और संगठित अपराध पर एक बड़ा प्रहार किया है। पुलिस के अनुसार इस दौरान दिल्ली में 3211 जगहों पर छापेमारी की गई और कुल 1042 टीमें तैनात रहीं। एक रिपोर्ट।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 229 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में 267 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 101 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 429 आरोपियों को गिरफ्तार कर 77,000 से अधिक क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 259 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा जुआ अधिनियम मामलों में 10 लाख रुपए से अधिक नकदी के साथ 528 व्यक्तियों को गिरफ्तार गया है। साथ ही 72 विदेशी नागरिकों की जांच की गई, जिसमें से एक के विरुद्ध निष्कासन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान के दौरान 5,000 से अधिक निवारक कार्रवाइयां की गई और 41,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन कवच का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को नशीले पदार्थों के खतरों से बचाना और शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली यातायात पुलिस ने फर्जी नो एंट्री परमिशन के इस्तेमाल को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार पिछले दो हफ्तों में ईस्टर्न और सेंट्रल ट्रैफिक रेंज में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जहां व्यावसायिक वाहन फर्जी परमिशन का उपयोग कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि नो एंट्री परमिट केवल अधिकृत प्रक्रिया के अंतर्गत ही जारी किए जा रहे हैं और किसी भी तरह का फर्जी या जाली परमिट इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में वाहन जब्त किए जा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फर्जी परमिट बनाने वाले गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ जाँच भी की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 32 श्रेणियों के सामान ले जाने वाले वाहनों को 3 प्रकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें वार्षिक और शॉर्ट टर्म नो एंट्री पास शामिल है। इनमें से अधिकांश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। यातायात पुलिस ने लोगों को किसी भी अनधिकृत एजेंट या दलाल से संपर्क न करने की सलाह दी है और केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही परमिट प्राप्त करने को कहा है। साथ ही उन्होंने माल वाहकों और वाहन चालकों से नियमों का पालन, परमिट की सत्यता की जांच करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज और कल कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले हनुमान मंदिर के आसपास यातायात की आवाजाही प्रभावित रहेगी। यातायात पुलिस ने सूचित किया कि इस क्षेत्र में आज रात 11 बजे तक गाड़ियों का आवागमन बाधित रहेगा, वहीं कल पूरे दिन यातायात पर असर पड़ने की संभावना है। यातायात पुलिस ने कहा कि इस दौरान रेल छत्ता चौक, सुभाष कट, जीपीओ चौक, केला घाट, आयरन ब्रिज, बुलेवर्ड रोड, लोथियन रोड, टी पॉइंट और मंकी ब्रिज के आसपास आवश्यकता पड़ने पर डायवर्जन भी लागू किए जा सकते हैं। यात्रियों को प्रभावित मार्गों से बचने, पहले से यात्रा की योजना बनाने और विशेष रूप से ISBT तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले वैकल्पिक मार्गों को अपनाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने निगरानी और प्रवर्तन की कार्रवाई को और तेज कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और त्योहारों के दौरान विशेष निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को किसी भी उल्लंघन के विरूद्व तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और पंजाब के पूर्व विपक्षी नेता हरविंदर सिंह फुलका आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्री फुलका केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता हरदीप सिंह पुरी तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चुग ने मानवाधिकारों के लिए श्री फुलका के लंबे समय से किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने 1984 के दंगों के दोषियों को सजा दिलाने में श्री फुलका के योगदान की भी प्रशंसा की। 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंचल कुमार ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय जाजू का स्थान लिया है। बिहार काडर के अधिकारी श्री कुमार इससे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। श्रीमती गुप्ता ने आज ऐसे कर्मयोगियों के परिवारों से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षों से लंबित 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी गई है और आश्वस्त किया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। दिल्ली के बादली रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज ROB के निर्माण की दिशा में पहल तेज हो गई है। ये कार्यवाही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा समस्या से संबंधित लिखित पत्र में मांग पर शुरू की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबंधित अधिकारियों को साइट के निरीक्षण के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि महापौर कार्यालय को आज सुबह एक ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस को तत्काल अवगत किया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचते ही परिसर की गहन और विस्तृत जांच में जुट गए। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या खतरे से जुड़ी सामग्री नहीं मिली और स्थिति सामान्य पाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए पहली मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह स्वगणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। भवनों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देश भर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणना कर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक राशि को मंजूरी दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में बताया कि ये जनगणना पिछली जनगणना से अलग है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों की इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया है।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओडिशा के स्थापना दिवस उत्कल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ओडिशा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय कला और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में राज्य विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कल से 7 दिवसीय प्रिंट मेकिंग कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में प्रिंट मेकिंग की समृद्ध परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर देशभर के 10 प्रमुख प्रिंट मेकिंग कलाकार कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को भारतीय भाषाओं में लागू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 3री से 8वीं कक्षा तक कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि पाठ्यक्रम अंग्रेजी में है लेकिन इसे स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करना होगा। श्री प्रधान ने कहा कि भारत में बौद्धिक विविधता और ज्ञान को प्रभावी ढंग से स्थानीय बनाने की क्षमता के कारण तेजी से अनुकूलन की क्षमता है। राजधानी में आज दोपहर के समय हल्के बादल छाए रहे और दिनभर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में IPL T20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 5वें ओवर में 1 विकेट पर बना लिए हैं 37 रन। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर कहा, संस्थान की देश के अन्नदाताओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत 48 घंटों में नशा तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध 3,211 स्थानों पर छापेमारी की। हनुमान जन्मोत्सव पर कश्मीरी गेट के आसपास आज और कल यातायात रहेगा प्रभावित। और विश्व के सबसे बड़े जनगणना कार्यक्रम का पहला चरण आज से प्रारंभ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।